हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद अध्याय 4 श्लोक संख्या 21 एंड 22। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय, गोविंदाय नमो नमः। यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत्श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सत्यो विधुनोति कल्मषं, तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमो नमः। विचक्षणाय चरणोपसादनात् संगम युधस्य भयतोन्तरात्मनः, विन्दन्ति हि ब्रह्मगतिं गतक्लमा, तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविध सुमंगल, क्षेमं न विन्दति विनाय दर्पणं, तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। किरात हूणा द्रपुलिंद पुलकशा, आभीर शुंभा यवनाख सादय, येनी च पापा यदपाशयाशया, शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। स एष आत्मा मवतामदीश्वर, कई मयोधर मयस् ममयस्तपोमय, गतव्यलीक हज शंकरादिभि, वितर्क्यलिंगो भगवान् प्रसीदताम्। श्रेयपतिर्यज्ञपति प्रजापति, धियं पतिर्लोकपतिर्धरापति, पतिर्गतिशान्धकविष्णुसात्वतां, प्रसीदतां मे भगवान् सतां प्रति। यदङ्ग्र्यभिद्या न समाधिदौतया, ध्यानोपश्यन्ति इतत्त्वमात्मन, वदन्ति चेतत् कवयोरथारुचिं, समे मुकुन्दो भगवान् प्रसीदताम्। प्रचोदिताये न पुरा सरस्वती वितन्वता चस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रा दुरभूत् किलास्यत समीरिषीणां ऋषभ प्रसीदता। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती युत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिके। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं कुरुतु वाचालं पंगुं लंघयति गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरं। श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय। दूसरा स्कंद अध्याय चार श्लोक संख्या 21। इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। सुखदेव गोस्वामी भगवान के चरणों की जो शरण ग्रहण करते हैं उन भक्तों की महिमा का बखान करते हुए वे कहते हैं, यदंग्र्य विद्या न समादितोतया धियानुपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मना वदन्ति चेतत् कवयो रथा यथा रुचं समे मुकुन्दो भगवान् प्रसीदताम्। यदङ्ग्र्यभिद्या न समादिदौतया धियानुपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मना वदन्ति चेतत् कवयो यथा रुचं समे मुकुन्दो भगवान् प्रसीदता। यदङ्ग्र्यभिद्या न समादितोतया ध्याय ध्यानु धियानुपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मना वदन्ति चैतत् कवयो यथा रुचिं समे मुकुन्दो भगवान् प्रसीदता। शब्दात् यद अंग्रिय यद यानी जिनके अंग्रिय यानी चरण कमल अभिध्यान अर्थात प्रत्येक क्षण चिंतन करते हैं कंटिन्यूअस। वो भक्त जो भगवान के चरण कमलों का चिंतन करते हैं समाधि समाधि धौतया, यानी वो समाधि में लगते हैं, क्योंकि जैसे ही भगवान के चरण कमलों की ओर भक्त आकर्षित हो जाते हैं तो भौतिक सारी जो वस्तुएं हैं उनका आकर्षण समाप्त हो जाता है और हृदय धोतया धुल जाता है, पवित्र हो जाता है, बुद्धि पवित्र हो जाती है। और धिया, धिया मतलब वो बुद्धि जो बहुत विमल हो, निर्मल हो, जिसमें भौतिक विकार नहीं होते हैं। अनुपश्यन्ति, महापुरुषों का अनुसरण करते हुए देखते हैं, वो अपनी मर्जी से नहीं करते। जो शुद्ध भक्त होते हैं वो सदैव जो महापुरुष होते हैं उनका अनुपश्यन्ति, उनको देखते हैं और उनके अनुसार ही भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, श्रवण करते हैं। अनुपश्यन्ति ही माना निश्चय ही तत्त्वम परम सत्य को आत्मना परमेश्वर का तथा अपना वदंती कहते हैं। च मतलब भी एतत यह कवयो, जो कवि जन होते हैं, दार्शनिक होते हैं या बहुत बड़े साइंटिस्ट होते हैं या विद्वान पंडित होते हैं, यथा रुचम जैसा वह सोचता है। स में मुकुंदम, स मतलब वो, मेमना मेरा, मुकुंद यानी भगवान श्री कृष्ण जो मुक्ति दाता है, भगवान प्रसीदता ऐसे भगवान जो मुकुंद है, मुक्ति के प्रदान करने वाले हैं। जो शुद्ध भक्त होते हैं वो जो वैष्णव होते हैं उनके पदचिन्हों पर चलकर उनके आदेशानुसार उनका स्मरण करते हैं और हृदय में उनके दर्शन करते हैं, समाधि लग जाती है। लेकिन जो बहुत बड़े बड़े दार्शनिक होते हैं वो यथा रुचिम अपनी अपनी इच्छा के अनुसार, किसी का अनुसरण नहीं करते, अनुपश्यन्ति नहीं करते, लेकिन अपनी इच्छा के अनुसार ही भगवान का चिंतन करते हैं। वो चाहे किसी तरह से भी पूजे जाए, परंतु ये बात तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि मुकुंद है वो मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। केवल उन्हीं भक्तों को मुक्ति प्राप्त होती है जो कि भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करते हैं। ऐसे मुकुंद को मैं अपना प्रणाम पेश करता हूँ ताकि वो मुझ पर प्रसन्न हो और मैं उनके विषय में कुछ बोलने की योग्यता प्राप्त कर सकूं। अनुवाद, भगवान श्री कृष्ण ही मुक्ति दाता है, भक्त प्रतिपल उनके चरण कमलों का चिंतन करते हुए तथा महापुरुषों के चरण कमलों पर चलते हुए समाधि में परम सत्य का दर्शन कर सकता है। तथापि विद्वान ज्ञानी जन उनके विषय में अपनी सनक के अनुसार चिंतन करते हैं, ऐसे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। श्रील प्रभुपाद जी अत्यंत ही सुंदर रीति से बता रहे हैं कि योगी जन इंद्रियों को वश में करने का कठिन प्रयास करके प्रत्येक के भीतर स्थित परमात्मा की झलक पाने के लिए योग की समाधि में स्थित होते हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया है, ध्यान रुचि यथा रुचम जो वदंती चेतत कवयो यथा रुचम, जो योगी जन होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, जो ज्ञानी जन होते हैं, वो बहुत बहुत प्रयास करते हैं, कठिन प्रयास करके भगवान को, परमात्मा जो सारे हृदयों में बैठे हुए हैं, उस रूप में समाधि में उनके दर्शन करना चाहते हैं। वो समाधि लगाते हैं ताकि हृदय में बैठे हुए परमात्मा के दर्शन हो सके। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं, किंतु शुद्ध भक्त प्रतिपल भगवान के चरण कमलों का स्मरण करते हुए वास्तविक समाधि को तुरंत ही प्राप्त कर देते हैं। यदंग्रि अभिद्या न समाधि दया, बस वो जैसे ही भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हैं, वो हृदय में बैठे हुए परमात्मा को देखने के लिए कठिन प्रयास नहीं करते, वो भगवान का साक्षात दर्शन करते हैं। और जैसे ही भगवान के चरणों का दर्शन करते हैं और कंटिन्यूअस उन दर्शन उन चरणों के अंदर अपने मन को लगाते हैं, तो प्रतिपल भगवान के चरण कमलों का स्मरण करते हुए वास्तविक समाधि को तुरंत ही प्राप्त कर देते हैं। यहाँ पर श्री प्रभुपाद बोलते हैं असली समाधि यही है कि आप भगवान के साथ कोई संबंध निर्माण करो, यही समाधि है। और ये तभी संभव है जब आप शुद्ध भक्त बनकर भगवान के चरणों की सेवा करते हो, क्योंकि ऐसी अनुभूति के द्वारा उसके मन तथा बुद्धि भौतिक उपयोग के रोग से धुल कर पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाते हैं। जैसे ही हृदय के अंदर भौतिक गंदगी के कारण ही भौतिक बुद्धि जो है वो गलत विचार करती है, गलत डिसीजन लेती है, लेकिन हृदय के अंदर जब भगवान के चरण कमल होते हैं तो जो भौतिक रोग है वो धुलकर हृदय और बुद्धि पवित्र हो जाते हैं। शुद्ध भक्त अपने आप को जन्म मृत्यु के सागर में पतित हुआ सोचते हैं, अतः वह अपने को उभारने के लिए भगवान से निरंतर प्रार्थना करता है। वह केवल भगवान के चरण कमलों की दिव्य धूल का एक कण बनना चाहता है। शुद्ध भक्त भगवत कृपा से भौतिक भोग के सारे आकर्षण से पूरी तरह रहित हो जाता है और कलमश से मुक्त रहने के लिए वह निरंतर भगवान के चरण कमलों का चिंतन करता रहता है। भगवान के महान भक्त राजा कुलशेखर ने प्रार्थना की है, कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरान्तम् अध्यैव मे विशतो मानसराज हंस प्राणाप्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्त। ये अत्यंत ही सुंदर प्रार्थना है, मेरा प्रिय श्लोक है, जिसमें महाराज कुलशेखर भगवान से एक प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान कृष्ण, मेरी प्रार्थना है कि मेरा मन रूपी हंस तुरंत ही आपके चरण कमल के डंठलों तक डूबकर उनके जाल में उलझ जाए, अन्यथा मेरी अंतिम सांस के समय जब मेरा गला कफ से रुद्ध हो जाएगा तब भला मैं आपका चिंतन कैसे कर सकूंगा। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, हंस तथा कमल नाल के मध्य घनिष्ठ संबंध होता है, अतएव यह उपमा अत्यंत ही उपयुक्त है। हंस यह परमहंस बने बिना जीव के लिए भगवान के चरण कमलों के डंठलों तक के जाल तक प्रवेश कर पाना असंभव है। डंठलों मतलब जैसे जो कमल का पुष्प होता है ना, उसका जो डंडी होती है, तना होता है ना मोटी, तो वहां पर केवल हंस जो है वो वहां पर जाकर उसके जाल में प्रवेश कर पाता है। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, भगवान के चरण कमल के जो गहराई है वहां पर पहुंचने के लिए हमको हंस या परमहंस बनना पड़ेगा। हंस की क्या विशेषता है कि वो बहुत सारा, यदि एक दूध और पानी मिलाकर रख दिया जाए तो उसमें से केवल दूध पी लेता है और पानी को वहीं छोड़ देता है। उसी तरह इस संसार में अगर देखा जाए तो माया और मायापति प्रत्येक जगह पर कृष्ण और कृष्ण की शक्तियां दिख रही हैं, लेकिन जो हंस होता है वो क्या करता है, माया जो भगवान की है उसकी ओर आकर्षित नहीं होता है, जो मायापति है उसी को ग्रहण करता है। भगवान के चरण कमलों के अतिरिक्त और कोई संसार में सार नहीं दिखता उसे। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, हंस या परमहंस परिमिला जीव के लिए भगवान के चरण कमलों के डंठलों के जाल तक प्रवेश कर पाना असंभव है। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि ज्ञानी अपने पांडित्य के बावजूद अनंत काल तक तर्क वितर्क करने पर भी परम सत्य का स्वप्न तक नहीं देख सकता। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो, जो केवल तर्क वितर्क करते रहते हैं, भगवान के अंदर श्रद्धा नहीं है, भगवान से प्रेम नहीं है, वो तो भगवान को सपने में भी नहीं देखते। भगवान ऐसे ज्ञानियों के समक्ष अपने आप को प्रकट न करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखते हैं। भगवान को कोई जरूरत नहीं है भगवान को समझना। इस भौतिक बुद्धि के ज्ञान से या भौतिक शास्त्रों के, भगवान साफ साफ बोलते हैं भगवत गीता में, ना हम वेदाय न तपसा न दाने न चेज्या, ना ही मुझे वेद पढ़ने से प्राप्त किया जा सकता है, न तपस्या करने से, न दान देने से, और कोई विधि नहीं है, सिर्फ भक्त्या त्वनन्यया शक्ता अहमेव विदोजना। ये भगवान की मर्जी है ना, वो किसको और कब समझ में आए। ये भगवान की, यहाँ पर शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवान ने अपना अधिकार सुरक्षित रखा है कि वो किसके सामने प्रकाशित होंगे और किसके सामने नहीं होंगे। भगवान ने साफ बता दिया 7.25 में, ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ो हम ये ना भी जानाती मामे भी परम अव्ययम। जो मूढ़ होते हैं, बेवकूफ होते हैं, वो मुझे नहीं जान सकते हैं क्योंकि मैं उनके सामने प्रकट होता ही नहीं हूँ। जब तक जीव अपने सारे अहंकार को छोड़कर भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करता है, तब तक भगवान उसके सामने प्रकट नहीं होते हैं। और आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, और चूंकि ऐसे लोग भगवान के चरण कमलों के डंडलों के जाल में प्रवेश नहीं कर पाते, अतएव सारे ज्ञानी अपना अपना भिन्न निष्कर्ष निकालते हैं और अंत में अपनी अपनी रुचि के अनुसार यथा रुचिम यह कहकर समझौता करते हैं, जितने पंथ उतने मत। ऐसे बताए ना, वदन्ति चेतत् कवयो यथा रुचम। वो बोलेगा भगवान निराकार है, कोई बोलेगा भगवान साकार है, कोई बोलेगा भगवान परमात्मा है, कोई बोलेगा भगवान का कोई स्वरूप नहीं। तो जितने पंथ हैं उतने मत हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान के चरणों की शरण ग्रहण नहीं करते, वो किसी अनुपश्यंत नहीं करते, किसी महापुरुषों के का अनुसरण करके उनके चरण चिन्हों पर चलकर भगवान की भक्ति नहीं करते। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल देते, कहते हैं भगवान कोई दुकानदार तो नहीं है, नहीं जो कि ज्ञान के विनिमय में सभी प्रकार के ग्राहकों को प्रसन्न करने का प्रयास करें। जिसका जितना ज्ञान होगा उसके अनुसार वो भगवान को समझ जाए। भगवान ऐसे नहीं करते, भगवान खुद जो है वे ही है। ऐसा नहीं है कि जितना तुमने उसको समझा उतना ही वो है ना। ज्ञानी तो अपनी बुद्धि से समझने का प्रयास करेंगे ना कि भगवान ऐसा है, भगवान ऐसा है। लेकिन भगवान का जो अस्तित्व है, भगवान की जो सत्ता है, भगवान की जो इंडिविजुअलिटी है, जो भगवान का अस्तित्व है, सो तो वैसा ही रहेगा ना। कोई अगर भगवान को निराकार कह देता तो भगवान निराकार बन जाएंगे क्या? ज्ञानी जो है वो अपने हिसाब से भगवान को कुछ ना कुछ जैसा यथारोचम जैसे उनकी इच्छा होती है उसके अनुसार समझते हैं, तो भगवान वैसा क्यों बनेंगे? भगवान जो है सो है, वे तो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर हैं और वे चाहते हैं कि लोग पूर्ण रूप से उनके ही शरणागत हों। भगवान की इच्छा यही है कि वो सारे धर्मों को छोड़कर लोग जो है वो भगवान के शरणों में आए। इसीलिए तो भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। भगवान पूर्ण रूप से हमारी शरणागति चाहते हैं। लेकिन शुद्ध भक्त पूर्ववर्ती आचार्यों के पद का अनुसरण करते हुए अपने गुरु के पारदर्शी माध्यम से परमेश्वर को देख सकते हैं, अनुपश्यन्ति। शुद्ध भक्त मानसिक तर्क यानी ज्ञान द्वारा भगवान का दर्शन करने का प्रयास कभी नहीं करता, अभी तो आचार्यों के पद चिन्हों पर चलता है। महाजनों ये न गतः स्वपंथा। अति वो वैष्णव आचार्यों में भगवान तथा भक्तों को लेकर कोई मतभेद नहीं रहता। भगवान श्री चैतन्य जोर देकर कहते हैं कि जीव भगवान का सनातन दास है और वह एक ही साथ भगवान से एक तथा पृथक है। भगवान चैतन्य के इस तत्व को वैष्णव मत के चारों संप्रदाय समान रूप से मानते हैं। मोक्ष के बाद भी भगवान की शाश्वत सत्ता सभी स्वीकार करते हैं और ऐसा कोई प्रामाणिक वैष्णव आचार्य नहीं है जो भगवान तथा अपने आप को एक सोच सके। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताते हैं, क्योंकि जो मायावादी लोग होते हैं वो क्या सोचते हैं कि हम और भगवान एक ही हैं, और जब हम इस भौतिक जगत में आए हैं तो हम भगवान से अलग हो गए हैं, लेकिन हमारे मृत्यु के बाद क्या होगा, हम भगवान से मिलकर एक हो जाएंगे, जो हमें सायुज्य मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। लेकिन भगवान का अस्तित्व और हमारा अस्तित्व पृथक है। जीव का एक स्वरूप है कि जीव को हर कंडीशन में, जब चाहे वो भौतिक जगत में हो या आध्यात्मिक जगत में, वो भगवान की सत्ता को स्वीकार करें, भगवान की शरण ग्रहण करें और भगवान से प्रेम करें। अब वो प्रेम तभी संभव है जब भगवान भी हो और जीव भी हो। अगर जीव भगवान में मिलकर भगवान बन जाएगा तो फिर उसकी इंडिविजुअल सेवा, उसका प्रेम वो कैसे प्रदर्शित करेगा भगवान के सामने। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी खास बात बता रहे कि चैतन्य महाप्रभु ने बताया है अचिंत्य भेदाभेद, भले ही जीव का, जीव जो है वो भगवान का अंश है, लेकिन फिर भी वो भगवान का अंश होते हुए भी उसका एक पृथक अस्तित्व है। और जितने भी प्रामाणिक आचार्य हैं, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि मृत्यु के बाद भी जीव की इंडिविजुअल एक पोजीशन होती है जो कि है भगवान के दास की, और जीव तभी आनंदित हो सकता है, ये आत्मा तभी आनंदित हो सकती है जब वो भगवान के साथ संबंध जोड़कर उसके साथ प्रेम करे। तो और ऐसा कोई प्रामाणिक वैष्णव आचार्य नहीं है जो भगवान तथा अपने आप को एक सोच सके। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान की सेवा में शत प्रतिशत लगे रहने वाले शुद्ध भक्त की यह विनम्रता भगवत भक्त को समाधि दशा प्राप्त कराती है, जिससे वह प्रत्येक वस्तु की अनुभूति करता है, क्योंकि भगवान निष्ठावान भक्त के समक्ष प्रकट होते हैं, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता 10.10 में कहा गया है, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मां उपयान्ति ते। जो कंटिन्यूस प्रेम के साथ मेरा भजन करेंगे, मैं उन्हीं को ऐसी बुद्धि दूंगा जिससे वो मुझे समझ सकते हैं या मुझे प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान को समझना या भगवान को प्राप्त करना इस भौतिक बुद्धि के द्वारा संभव नहीं। भगवान प्रोसेस कर बता रहे हैं कि आपको यदि मुझे प्राप्त करना है और मुझे समझना है तो ज्यादा अपनी अक्ल लगाने की जरूरत नहीं है। आपकी ये जो अक्ल है ना, वो उससे आप मुझे नहीं समझ सकते हो। आप ऐसा करो, कंटिन्यूस मेरा भजन करो प्रेम के साथ, दादा तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं, प्रेम के साथ मेरा भजन करो, फिर मैं तुमको एक नई अक्ल दूंगा। ददामि बुद्धि योगं तं, और उस अक्ल से तुम मुझे समझ सकते हो। भगवान प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि के स्वामी होने से, यहां तक कि अभक्तों के भी, अपने भक्त को समुचित बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे शुद्ध भक्त स्वतः भगवान तथा उनकी विभिन्न शक्तियों के विषय में असली तथ्यों से अवगत हो जाता है। भगवान ना तो किसी की चिंतन शक्ति से, ना परम सत्य विषयक वाग जाल से प्रकट होते हैं। लोग क्या करते हैं, बहुत देर तक वार्ड जगलोई अपने शब्दों के द्वारा भगवान को समझाने का प्रयास करते हैं, भगवान की भक्ति नहीं करते, भगवान को सरेंडर नहीं करते, भगवान के चरण कमलों का आश्रय नहीं लेते, शुद्ध महात्माओं और आचार्यों की को अनुपश्यंती, उनका अनुसरण नहीं करते, और अपनी बुद्धि से बहुत बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स देते हैं या फिर भगवान को समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान ना तो किसी की चिंतन शक्ति से, न परम सत्य विषयक वाग्जाल से प्रकट होते हैं, अपितु वे भक्त के समक्ष तभी प्रकट होते हैं जब भक्त के सेवा भाव की प्रवृत्ति से पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाते हैं। अगर भगवान को समझना है ना, तो उसका तरीका ये नहीं है कि हम अपने ज्ञान की मदद से भगवान को समझे। जब हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान को तभी हम प्रसन्न कर सकते हैं। और यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि अपितु वे भक्त के समक्ष तभी प्रकट होते हैं जब भक्त के सेवा भाव की प्रवृत्ति से पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाते हैं। सुखदेव गोस्वामी ना तो चिंतक हैं, ना ही जितने पंथ उतने मत सिद्धांत के समर्थक हैं, वो चिंतक नहीं है। याद रखिए, जो भागवतम के श्लोक हैं वो ऐसे नहीं है ज्ञान मार्ग नहीं है, ये भक्ति मार्ग है, क्योंकि इसमें तो भगवान श्री कृष्ण को स्वीकारा गया है। इसमें तो हर पन्ने पर हर शब्द पर यही बताया गया है कि हमें भगवान श्री कृष्ण के चरणों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। इसमें कोई मानसिक चिंतन नहीं है। यदि हम ऐसे शुद्ध वैष्णवों की टीकाओं को पढ़ेंगे और उनसे यदि हम भगवान उनका चरणों का अनुसरण करते हुए, उनके उपदेशों का अनुसरण करते हुए भगवान को शरणागत जाने का प्रयास करेंगे, तभी हमें भगवान जो है हमारे सामने प्रकट होंगे, क्योंकि ऐसी प्रयास से ही भगवान संतुष्ट होते हैं। वरना यहाँ श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी ना तो चिंतक थे, ना ही जितने पथ उतने मत सिद्धांत के समर्थक थे, अपितु वे केवल भगवान से उनके दिव्य आनंद का आवाहन करते हुए प्रार्थना करते हैं। भगवान को जानने का यही एक तरीका है, भगवान को जानने का यही तरीका है कि हम भगवान के चरणों की सेवा करें, भगवान के पवित्र नाम का जप करें और शुद्ध आचार्य ने जो रास्ते बताए हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, उन्हीं पर चलते हुए श्रद्धा के साथ यदि हम आगे बढ़ेंगे तो भगवान हमें ऐसी बुद्धि देंगे जिससे हम भगवान को समझ सकेंगे। आगे अत्यंत ही सुंदर श्लोक है जिसमें सुखदेव गोस्वामी अत्यंत ही सुंदर रीति से भगवान की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं, प्रचोदितायेन पुरा सरस्वती वितन्वताजस्य सतिं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रा दुरभूत् किलास्यत समी ऋषीणां ऋषभ प्रसीदताम् प्रचोदितायेन पुरा सरस्वती वितन्वताजस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रा दुरभूत् किलास्यत समी ऋषीणां ऋषभ प्रसीदताम् प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती। प्रचोदिता यानी प्रेरित, येन जिसके द्वारा, पुरा यानी सृजन से प्रारंभ में, जब संसार का सृजन नहीं किया था उससे पहले जिन्होंने ब्रह्मा जी को प्रेरित किया, सरस्वती यानी विद्या की देवी, वितन्वता विस्तारित, अजस्य, अजस्य मतलब प्रथम सृजित जीव ब्रह्मा जी, जिनका जन्म जो है वो किसी माता पिता से नहीं होता है, बल्कि अजस्य इसलिए कहा गया, अजन्म कहा जाता है, जिनका जन्म जो है वो भगवान की गर्भोदक्षाय विष्णु जो है उनके नाभि के ऊपर जो कमल उत्पन्न होता है उनसे होता है। सतीम स्मृतिम यानी शक्तिशाली स्मरण शक्ति, हृदि यानी हृदय में, स्वलक्षणा प्रादुर्भूत अखिल, स्वलक्षणा मतलब अपना, लक्षित, लक्षण मतलब लक्षित, प्रादुर्भूत यानी उत्पन्न किया गया, वो ब्रह्मा जी जिनको भगवान ज्ञान देते हैं, और जब ब्रह्मा जी ज्ञान का विस्तार करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये उनके मुख से उत्पन्न हुआ है, लेकिन वास्तव में जो भी ज्ञान है वो भगवान से प्रारंभ होता है। तो कहते हैं किल यानी मानो, आस्यतः मुंह से, समे ऋषिणाम, स मतलब वे, मे मना मुझ पर, ऋषिणाम यानी शिक्षकों का, ऋषभ प्रमुख प्रसिद्धते यानी जो आदि कवि ब्रह्मा को जो सबसे ज्यादा ज्ञानी है उनको भी ज्ञान देने वाले भगवान है जो ऋषभ है, समस्त ऋषियों के भी ज्ञान देने वाले हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ ताकि वो मुझे इस योग्य बनाए कि मैं उनका गुणगान कर सकूं। श्रीला प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से समझाएंगे, फिर अनुवाद देखिए। जिन्होंने सृजन के प्रारंभ में ब्रह्मा के हृदय में शक्तिशाली ज्ञान का विस्तार किया और सृष्टि तथा अपने विषय में पूर्ण ज्ञान की प्रेरणा दी, और जो ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुए प्रतीत हुए, वे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद जी कहते हैं, जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं कि ब्रह्मा से लेकर क्षुद्र चींटी तक सारे जीवों को के परमात्मा रूप में भगवान प्रत्येक जीव को वांछित ज्ञान प्रदान करते हैं। जीवों के हृदय में जो बुद्धि में जो ज्ञान है ना, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 15.15 में कि मत्त स्मृतिम ज्ञानम अपोहनम च। जितना जितना मतलब जीव जो है डिजर्व करता है उतनी उसको बुद्धि और ज्ञान और विस्मृति दी जाती है। प्रत्येक जीव भगवान से मतलब 64 में से 50 के अनुपात में या पूर्ण ज्ञान का 78% अर्जित करने की क्षमता रखता है। यानी जितना जितना आपका सरेंडर लेवल होगा तो भगवान से आप है ना 78% ज्ञान जो है प्राप्त कर सकते हो भगवान के विषय में, 64 में से 50%। तो आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं चूंकि जीव भगवान का स्वाभाविक अंश है अतएव वह भगवान के संपूर्ण ज्ञान को आत्मसात करने में असमर्थ होता है। आगे श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि बद्ध अवस्था में जीव को शरीर के परिवर्तन या मृत्यु के साथ सब कुछ भूल जाना होता है। यही समर्थ ज्ञान पुनः प्रत्येक जीव में भगवान द्वारा जीव के हृदय के भीतर से प्रेरित किया जाता है और यही ज्ञान की जागृति कहलाती है, क्योंकि यह निद्रा या अचेतन अवस्था से जागरण के तुल्य है। यह ज्ञान की जागृत भगवान के पूर्ण नियंत्रण में ही होती है, अतएव व्यवहार जगत में विभिन्न व्यक्तियों में ज्ञान की विभिन्न कोटियां पाई जाती हैं। यह ज्ञान की जागृति ना तो स्वतः घटती है ना ही वह भौतिक अंतःक्रिया से क्रिया ही से, इसकी पूर्ति करने वाले स्वयं भगवान हैं। धियाम पति, जैसे हमने पढ़ा था ना धियाम पति, पति वाला जो श्लोक था, तो बुद्धि देने वाले भगवान हैं, लेकिन हमारे कार्यों और हमारी शरणागति हमारे प्रयासों को देखकर उसी के अनुसार भगवान जो है वो हमें बुद्धि देते हैं। और यहाँ आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं क्योंकि ब्रह्मा तक परम सृष्टा के इस नियम के अधीन है। ब्रह्मा जी भी जब पूर्ण तरह सरेंडर हो जाते हैं तब भगवान उनको हृदय में ज्ञान देते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा माता पिता के बिना उत्पन्न होते हैं, क्योंकि ब्रह्मा के पहले कोई अन्य जीव ना था। ब्रह्मा उस कमल से उत्पन्न होते हैं जो गर्भोदक्षायी विष्णु की नाभि से प्रकट होता है और इसीलिए वे अज कहलाते हैं। ये ब्रह्मा या अज भी भगवान के अंशारूप जीव है, लेकिन भगवान के सर्वाधिक पवित्र भक्त होने के नाते भगवान मुख्य सृष्टि कर लेने के बाद भौतिक प्रकृति के द्वारा उन्हें सृष्टि करने की प्रेरणा देते हैं। अतएव ना तो प्रकृति ना ही ब्रह्मा भगवान से स्वतंत्र हैं। भौतिक विज्ञानी प्रकृति की प्रतिक्रियाओं का अवलोकन मात्र कर सकते हैं। यहाँ शिला प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं कि भौतिक प्रकृति में कोई भी जीव, चाहे वो ब्रह्मा भी क्यों ना हो, वो स्वतंत्र नहीं है। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है उसे कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं होता है भगवान के विषय में। और भौतिक विज्ञानी जो साइंटिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, प्रकृति की प्रतिक्रियाओं का अवलोकन मात्र करते हैं। यानी प्रकृति जो भौतिक प्रकृति है उसमें क्या घटित हो रहा है, जैसे वो क्या रिसर्च करते हैं कि भाई पानी है तो वो कैसे बना, हवा है तो वो कैसे बनी, सूर्य है तो वो भगवान वो सूर्य जो है वो धरती से कितना दूर है, उसका सर्कल कितना है, मतलब प्रकृति में जो घटित हो रहा है ना उसी के विषय में वो जानने का प्रयास करते हैं। प्रकृति की क्रियाओं का अवलोकन मात्र करते हैं, वे ऐसे कार्यकलापों के पीछे कार्यरत निर्देशन को नहीं समझ पाते। ये नहीं समझते कि ये अगर हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है। है ना, सूर्य अगर सुबह को उदय होता है और शाम को अस्त हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है और किसके निर्देशन से हो रहा है ये समझ में नहीं आएगा। वो ये सिर्फ बताएंगे कि भाई इतने बार ये होता है, इतने समय ये होता है और इस समय में गर्मी होती है, इस समय में सर्दी होती है, तो ये सब कौन कर रहा है ये नहीं बताते हैं वो। और इसके साथ साथ में प्रकृति की जो प्रतिक्रिया है वो तो समझाते हैं कि ये हो रहा है, लेकिन इस प्रतिक्रिया के पीछे हाथ किसका है, ये सब किसके कंट्रोल में है, वो उस भगवान को नहीं जानती कि कौन वर्षा बरसाता है, कौन है ना फलों बीज में फल डालता है, कौन वृक्ष उगाता है, उसके अंदर सब्जियों के अंदर इतनी शक्ति कहाँ से आती है, और जो पृथ्वी के अंदर इतनी सुगंध कहाँ से आती है, बीज के अंदर वृक्ष कहाँ से आता है, ये सब नहीं, बस ऐसा हो रहा है वो ऐसा समझा सकते हैं। शिला प्रभुआ जी एक बहुत ही सुंदर यहाँ पर उदाहरण देते हैं कि जिस तरह की एक शिशु बिजली के कर्तव्य को तो देखता है किंतु उसे बिजली घर के इंजीनियर का कोई भी ज्ञान नहीं होता है ना। छोटा बच्चा होता है, अगर उसके सामने इलेक्ट्रॉनिक कोई टॉय होगा तो वो उसको देखकर खुश होगा कि कितना अच्छे से चल रहा है, ये उड़ रहा है, ये हो रहा है, वो रहा है, उसको तो समझ जाएगा। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक है तो वो बिजली घर का जो इंजीनियर है उसने इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी बनाई है और उसी के कारण ये चल रहा है, उसको नहीं समझ में आता। साइंसदान आज सारे जानवर जितने भी हैं छोटे छोटे बटरफ्लाई मच्छर और सबके विषय में बताएंगे कि ये इसके अंदर ये है ये है ये, लेकिन वो किसकी शक्ति से कार्य कर रहा है उसको नहीं जानते। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं भौतिक विज्ञानी का यह अपूर्ण ज्ञान उसकी अल्पज्ञता के कारण है, अतएव वैदिक ज्ञान सर्वप्रथम ब्रह्मा के अंतःकरण में प्रविष्ट कराया गया, जिससे ऐसा लगता है कि ब्रह्मा ही वैदिक ज्ञान का वितरण करने वाले हैं। निसंदेह ब्रह्मा वैदिक ज्ञान के प्रवक्ता हैं, किंतु वास्तव में भगवान ने ही उन्हें ऐसा दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया है, क्योंकि यह ज्ञान सीधे भगवान से अवतरित होता है, इसीलिए वेदों को अपौरुषीय कहा जाता है, जिसका अर्थ यह है कि वह ज्ञान जो किसी सृजित जीव द्वारा प्रदान किया गया नहीं है। ये जो शास्त्र का ज्ञान है, जो वेदों का ज्ञान है, वो किसी जीव का नहीं है, जीव के द्वारा जो वेद हैं वो साक्षात भगवान के द्वारा रचित हैं, इसलिए उनको अपौरुषीय कहा गया है। यदि वो ब्रह्मा जी के द्वारा रचित होते तो ब्रह्मा जी भी जीव है ना, भले ही वो प्रथम जीव हैं, लेकिन जीव हैं तो जीव तो जो लिखेगा या जो ज्ञान देगा उसमें कोई ना कोई त्रुटि रह सकती है, लेकिन वैदिक ज्ञान क्योंकि साक्षात भगवान के द्वारा प्रकट हुआ है इसलिए उसमें कभी कोई त्रुटि नहीं हो सकती। सृजन के पूर्व भगवान उपस्थित थे नारायण पर व्यक्तात्, अतएव भगवान द्वारा उच्चरित शब्द दिव्य ध्वनि की लहरियां हैं। ध्वनि के दो प्रकारों यानी प्राकृतिक और अप्राकृतिक में जमीन आसमान का अंतर है। भौतिक शास्त्री केवल प्राकृतिक ध्वनि या भौतिक आकाश में स्पंदती ध्वनि पर ही विचार कर सकता है, अतएव हमें यह जान लेना चाहिए कि सांकेतिक अभिव्यंजनाओं के रूप में अंकित वैदिक ध्वनियां इस ब्रह्मांड में किसी के द्वारा तब तक नहीं समझी जा सकती जब तक उन्हें अप्राकृतिक ध्वनि के स्पंदनों द्वारा प्रेरित ना किया जाए। शिला प्रभुपाद जी यहाँ पर बहुत ही मुख्य बात बताते हो, कहते हैं कि इस संसार में चाहे कोई कितना ही ज्ञानी क्यों ना हो जाए, वैदिक ज्ञान चाहे वो कितना ही प्राप्त कर ले, लेकिन जो वो अप्राकृतिक ध्वनि है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, वो जब तक उन्हें अप्राकृतिक ध्वनि का संग प्राप्त नहीं होगा, उनके द्वारा प्रेरित नहीं किया जाएगा, तब तक जो है वो जी आध्यात्मिक ज्ञान को नहीं समझ सकता। ये जो भगवान या भगवान के विषय जो ज्ञान है वो हमारी बुद्धि का विषय नहीं है, वो तो कृपा का विषय है। और वो कृपा कैसे प्राप्त होगी, जो शिष्य परंपरा द्वारा भगवान से ब्रह्मा को, ब्रह्मा से नारद को, नारद से व्यास को और आगे इसी क्रम में प्राप्त होती है। कोई भी संसारी विद्वान वैदिक मंत्रों के असली आशय को ना तो प्रकट कर सकता है, ना उनको अनुदित कर सकता है। उन्हें तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक मनुष्य वेद गुरु द्वारा प्रेरित या दीक्षित ना हो ले। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जब तक कोई सामर्थ्य गुरु, कोई शुद्ध गुरु का शरण नहीं ले लेता है, जब तक दीक्षा नहीं हो जाती है, शुद्ध गुरु का की कृपा प्राप्त नहीं हो जाती है, तब तक कोई भी मनुष्य जो है वो भगवान को विषय में ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। आदि गुरु तो स्वयं भगवान ही हैं और परंपरा से यह ज्ञान चलता रहा है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय में स्पष्ट कहा गया है, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजऋषयो विदो सकालेनेह महता योगो भ्रष्टो विजायते। अतएव दिव्य ज्ञान जब तक किसी वैद्य परंपरा से प्राप्त नहीं होता है, तब तक उसे विफल यानी विफलामता मानना चाहिए, भले ही वह संसारी कला या विज्ञान में कितनी ही प्रगति क्यों ना कर ले। तो भले संसार में दिखने में लग रहा होता है कि वाह ये कितने ज्यादा ज्ञानी है, ये कितना इनको ज्ञान है वगैरह जो भी है, लेकिन वो यदि किसी शुद्ध परंपरा में आकर किसी शुद्ध वैष्णव से शिक्षा या दीक्षा नहीं लेते हैं, तब तक उन्हें भगवान के विषय में कुछ भी समझ में नहीं आता। और यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी अपने अंतःकरण में भगवान द्वारा प्रेरित होकर ही भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, जिससे वे महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए सृष्टि संबंधी तथ्यों को सही सही बतला सके। गुरु संसारी विद्वान की तरह सैद्धांतिक चिंतक नहीं होता, अपितु वह श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम होता है। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम यानी कि गुरु ऐसा होता है जो श्रवण करा है, जिसने बहुत बहुत शुद्ध वैष्णवों से श्रवण किया है और उस श्रवण के द्वारा उसे भगवान के अंदर पूरा निष्ठा हो गई है कि वो भगवान ही हम सबका कल्याण कर सकता है और उसकी भक्ति से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। गुरु वही हो सकता है जो भगवान के विषय में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो। जिसको श्रोत्रियम का मतलब होता है जिसने सारे वेदों को श्रवण किया है और वेदों के अंतिम अभिप्राय को समझ गया है और उसके बाद उसको भगवान के अंदर पूरी निष्ठा है। वो कभी अपने मान सम्मान के लिए ना प्रचार नहीं करता, बल्कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो जीवों के ऊपर कृपा करके भगवान के विषय में बताता है, वो ब्रह्मनिष्ठ होता है और संपूर्ण वेदों का ज्ञाता होता है, क्योंकि वो परंपरा से आए हुए गुरु परंपरा से जुड़ता है और उसी शुद्ध आचार्यों के चरण चिन्हों पर चलकर भगवान के विषय में समझकर दूसरों को समझाने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त हुआ। तो इस श्लोक में अत्यंत ही सुंदर बात बताई गई है कि कोई भी जीव चाहे कितना ही ज्ञानी क्यों न हो जाए, कितना ही बुद्धिमान क्यों न हो जाए, साक्षात ब्रह्मा की तरह चार चार बुद्धि भी लेकर आ जाए, लेकिन वो अपने प्रयासों से भगवान को नहीं समझ सकता। जब तक वो भगवान को शरणागति नहीं हो जाता है, जब तक वो कंटिन्यूस भगवान के पवित्र नाम का जप नहीं करता है, जब तक वो भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास नहीं करता है, तब तक भगवान उसको ज्ञान प्रदान नहीं करते हैं। क्योंकि भगवान ने कह दिया तेषां सतत युक्तानां भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तब ये नमाम उपयन्ति ते। मुझे समझने का केवल एक ही तरीका है, तो तुम कंटिन्यूस मेरा भजन करो, मेरे पवित्र नाम का स्मरण करो, मेरी कथाओं को श्रवण करो और शुद्ध वैष्णवों का अनुसरण करो। जो शुद्ध वैष्णव हैं उनके अनुसरण करो, उनके चरण चिन्हों पर चलो और तब मैं तुम्हें ऐसी बुद्धि दूंगा जिसे तुम मुझे समझ सकोगे और मुझे प्राप्त कर सकोगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा। मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।